ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भैया बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, 4:30 बजे से बैठे हो पर थके हुए नहीं लग रहे हो। शाबाश, तो अपने को अपनी पीठ थपथपा, सारे स्माइल कर रहे हैं। ऐसे अच्छे स्टूडेंट भगवान को मिले और क्या चाहिए। अभी जो पढ़ाई पढ़नी है वो भी बहुत लाइट लाइट, थकाएगी नहीं। उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें, कोई कोई उठे हुए हैं जब तक वापिस आएंगे हम सभी, थोड़ा सा ओम ध्वनि करें पहले, कर ले, थोड़ा हाथों को फ्री करें, थोड़ा चुस्त। और अभी ओम ध्वनि के साथ एक बात ऐड करेंगे, जैसे ही ओम चैंट करेंगे वैसे ही माथे पर चमकता स्टार देखते हुए उसकी पीसफुल लाइट स्प्रेड होते हुए देखेंगे और ओम के साथ शांति भी बोलेंगे, ठीक है। बोलते बोलते ध्यान स्टार पर और उसकी स्प्रेड होती हुई लाइट पर, जितना मर्जी उसको फैलता हुआ देख सको, जितना दूर तक अच्छा लगेगा। गहरा लंबा सांस लेंगे, बोलना शुरू करेंगे। माथे पर चमकता सितारा देखें ध्यान से, और उसमें से निकलता शांति का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। बोलते हुए ध्यान मस्तक ज्योति बिंदु पर। शांति। आपका हमारा राजयोग का विषय है। राजयोग के द्वारा व्यवहारिक शक्तियों की प्राप्ति, प्रैक्टिकल पावर्स थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि राजयोग का पर्पस हमको एक अच्छा राजा बनाना है, ऐसा रूलर जो जिंदगी के हर फील्ड में लीडर हो। लीडर हुक्म चलाने वाला नहीं, लेकिन बाय एक्शन सबको लीड करने वाला। तो इसलिए राजयोग कर्म क्षेत्र पर काम करता है। गीता में भी कहा है, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म में कुशलता का दूसरा नाम है। योगा मेडिटेशन इज द अदर नेम ऑफ परफेक्शन इन एक्शन। जो हमारे कर्म को इफेक्ट दे दे, वही रियल मेडिटेशन होता है। और सुबह हम बात कर रहे थे, जो जिसको प्यार से याद करता है, दिल की बातें करता है, वो उसके जैसा बनने लगता है। और राजयोगा में तो हम भगवान को रिश्तेदार बना लेते हैं, दिल का प्यार उससे जोड़कर प्यार भरी उनसे शेयरिंग किया करते हैं। इसलिए उनकी शक्तियां लेने के हकदार बन जाते हैं। थोड़ा टाइम पहले भी भाई जो आपको अपना मेडिटेशन से ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे थे, वो भी पावर्स अंदर आई, पावर टू कंट्रोल ओवर द सेंसेस, जजमेंट पावर आई, परखने की शक्ति आई। तो इन शक्तियों ने उनका जीवन एक दुखमय जीवन से सुखमय जीवन में परिवर्तन कर दिया। अब तक योगा मेडिटेशन के लिए हम समझते थे दुनिया छोड़ देनी पड़ेगी। बहुत लोग थोड़े वर्षों पहले हमको ये बोला करते थे, अभी बच्चे छोटे हैं ना, बड़े हो जाए फिर मेडिटेशन सीखेंगे। अभी तो हम वर्किंग है, बहुत बिजी रहते हैं ना, रिटायर हो जाए तो फिर सीखेंगे। हम उनको कहते थे फिर तो नहीं भी सीखना तो भी चलेगा। ये तो वैसी सी बात है, कोई पेशेंट कहे अभी तो बहुत बीमार हूं ना, दर्द बहुत है ना, थोड़ा ठीक हो जाऊं फिर इलाज कराऊंगा। अरे वे ठीक होके तो इलाज नहीं भी कराएगा तो भी चलेगा ना। तो मेडिटेशन भी एक वे ऑफ लिविंग है, इसलिए आजकल हम इसको नाम देते हैं इजी मेडिटेशन फॉर बिजी पीपल। ये है ही बिजीएस्ट पीपल के लिए। जो लोग कहते हैं ना हमको मरने की भी फुर्सत नहीं, उन्हीं के लिए मेडिटेशन है, ताकि फुर्सत मिल जाए थोड़ी सी, फुर्सत मिल जाए थोड़ी सी। क्यों? फुर्सत न मिलने का ये कारण नहीं है कि आप काम ज्यादा करते हैं, नहीं, फुर्सत न मिलने का ये कारण है कि आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। यहां मैनेज ठीक करना है, तो आप अगर अपनी शक्तियों को ठीक मैनेज करते हैं तो जितना करते हो उससे चार गुना करना बेशक, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, कम थकेंगे, कम सोचेंगे। क्वांटिटी थॉट से क्वालिटी थॉट आ जाएगा, पावर टू जज, पावर टू टॉलरेट आ जाएगी, और उससे काम नहीं थकाएगा और ये रिफ्रेशमेंट अंदर से आती जाएगी। तो ये कब नहीं कहना, नहीं सोचना कि मेडिटेशन के लिए टाइम चाहिए, इसके बजाय दूसरी टर्म है इसके लिए कि मेडिटेशन करेंगे तो टाइम बच जाएगा, टाइम मिल जाएगा। अपने यहाँ जितने भी भाई बहनों को आप देखते हो जैसे खाली घूम रहे हैं, स्माइलिंग फेस, वाइट ड्रेस, जैसे कुछ करते ही नहीं है, माइक पे आते हैं प्यार से बोलने लगते हैं, आपको मालूम नहीं पीछे कितना काम करके आते हैं। और लगभग सब भी सुबह 3 बजे उठते हैं, रात 10 और 11 के बीच सोते हैं, सारा दिन ब्रेन वर्क, फिजिकल वर्क सब कुछ रहता है, फिर भी खाली दिखते हैं, क्योंकि आई हैव टू डू कहीं भी नहीं है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू डू है। वेन यू वॉन्ट टू डू देन काम आपके लिए गेम हो जाता है, जब हैव टू डू है तब वो आपकी एनर्जी को किल करता है, फैटिक पैदा करता है, आपके बॉडी सेल्स को तोड़ता रहता है, ब्रेन सेल्स को भी वीक करता रहता है। लेकिन जब आप उसको एंजॉय करते हैं किसी भी काम को, तो काम आपके लिए गेम बन जाता है, आपकी शक्तियों से छोटा हो जाता है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन अनंत शक्तियां पैदा करता है। आपने एक फोटो देखा होगा लगभग सभी ने मां दुर्गा का, उस फोटो की एक स्पेशलिटी रहती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, सभी पिक्चर्स में नहीं होती है। मां को दिखाते हैं 8 हाथ लगे हुए, विद 8 हैंड्स है, फीमेल कन्या शेर पर बैठी है, शेर कोई सवारी करने की चीज तो है नहीं, और 8 हैंड्स फिजिकली किसी को लग जाए तो काम इजी होगा, ज्यादा होगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 2 से 4 हाथ भी हो जाए तो काम ज्यादा करेंगे नहीं, और ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हमको एक बार कोई बच्चे ने पूछा था कि माता का ब्लाउज कौन सिलाई करता होगा, इतनी सारी बाजू है, हंसी की बात है, लेकिन मीनिंग ये है कि 8 टाइम पावर्स, 8 टाइम पावर्स देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो वो अष्ट शक्ति प्राप्त होती है मेंटल पावर, लेकिन सिंबॉलिक दिखाया है, फिजिकल हैंड्स दिखा दिए, जैसे किसी को बोलते हैं सो एंड सो इज माय राइट हैंड, हैंड लगा हुआ नहीं रहता है लेकिन हेल्पफुल है, इसलिए मेरी पावर बढ़ा रहा है, इसलिए उसको हमने राइट हैंड करके बोल दिया। ऐसे ही जब माइंड परमात्मा से कनेक्ट होता है तो मल्टीपल एनर्जीज अंदर आती है, जिससे एक नॉर्मल इंसान से आप 8 गुना तो क्या 16 20 50 गुना भी अधिक काम करके भी खाली दिखाई पड़ सकते हैं। खालीपन आज डॉक्टर रे कल भी आज भी बड़े प्यार से दादी जानकी को याद कर रहे थे, हम भी उनके बहुत नजदीक रही हूँ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे है वो ब्रह्मा कुमारीज के। एट द एज ऑफ 97 ईयर्स की एज में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का भार उन पर आया और उसके बाद 104 वर्ष तक वो शरीर में रहे। बहुत नजदीक उनके मैं बैठी रहती थी बहुत टाइम, और थोड़ी थोड़ी देर में कोई कोई देश के रिप्रेजेंटेटिव बीके सेंटर्स के, कोई कोई जोन हमारे इंडिया में जोन है जो 4-4, 5-5 स्टेट का एक है, उनके कोई हेड आए रहते थे, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दादी को यस और नो बोलना होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में है सबको एक यस एक नो की पावर मालूम है कि एक जो भी किसी इंस्टीट्यूशन का बड़ा है उसका एक यस कितना मीनिंग रखता है। कि एक देश में 10 सेंटर खोलने आओ के खोल दो तो सिर्फ ओके नहीं होता है ना, उसके पीछे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी परखने की शक्ति, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा कोऑपरेशन, बहुत सारी हेल्प, बहुत सारा इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है। तो उनके वो यस और नो ऐसे इजीली निकलते थे, ऐसे इजीली जो ऑलवेज लगता था दिन रात कभी चले जाओ कि वो आपके लिए खाली बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, घर की माँ बस आपके लिए खाली बैठी हैं, जबकि वो यहाँ बैठ करके 140 देशों में बैठी हुई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही थी, उनके एक एक डिसीजन इतने बड़े बड़े रीजंस के कारण बन रहे थे, लगता था खाली है कुछ नहीं करते। तो इसलिए जो बहुत पावरफुल होता है वो बहुत कुछ करते हुए भी हमेशा लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए पावर्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बात कहना आज बंद कर देना, कोई भी बात के लिए बहुत बिजी है, बहुत काम है, क्या करें ना, टाइम नहीं मिलता है ना, थोड़ा फैशन हो गया इस भाषा का, नहीं तो लगेगा शायद कुछ करते ही नहीं है, कोई कहेगा फलाना काम, हाँ ठीक है हो जाएगा, ठीक है हरेक को बोलो हाँ हो जाएगा और सच में हो जाएगा, आप कर पाएंगे। उस यस के अंदर बड़ी ताकत रहती है, वो टाइम को मैनेज करा देता है। तो ये 8 पावर्स इज द बिगेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, और बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल है ये जो लीडरशिप स्किल्स को पैदा करता है। आप लीड कर सकते हैं कितने भी बड़े बड़े कामों को। इसलिए अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पावर्स थ्रू मेडिटेशन, हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे और आप अपने अपने वर्क फील्ड के साथ उसको कोरिलेट करते जाइएगा और साथ साथ उन बातों को पकड़ते जाइएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स पर मैंने पावर को कैसे यूज करना है। अगर साथ साथ आप कोरिलेट करेंगे ना आपको बहुत सारे आंसर्स आज ही मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये गॉडली गाइडेंस से मिली है हमको पावर्स, हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है। तो 8 पावर्स सामने पिक्चर में दिखाई गई है जो माइंड को परमात्मा पर कनेक्ट करने से हमारे अंदर आती है, उसकी शक्ति हमारी हो जाती है और कर्म पर आकर इफेक्ट डालती है जब तक चलेगा। 8 पावर्स की आप लिस्ट बना सकते हैं, बाद में भी आपके काम आएगी, जो परमात्मा को याद करने से डेवलप होती है। उसमें न सिर्फ हम परमात्मा को याद कर रहे होते हैं, ज्ञान भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि राजयोग एक राजों भरा योग है, राजयोग भी है ये, राजयोग भी है। राज यानी मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स अबाउट फाइनल ट्रुथ्स, जब वो सीक्रेट्स हम समझ लेते हैं तो कनेक्ट होते हैं, और सीक्रेट समझ करके कनेक्ट होते हैं तो कनेक्शन एप्रोप्रिएट होता है। जैसे दिया में घी डालो, तेल डालो तो बाती ठीक जलती है, ऐसे ज्ञान का घी डालते हैं तो योग की बत्ती जग जाती है, ज्योति जगती है। तो इसमें पहली शक्ति हमको राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है, पावर टू विदड्रॉ। अभी एक बार लिस्ट बोलती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दूंगी। पावर टू विदड्रॉ, पहली शक्ति विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, मीनिंग बाद में समझेंगे। दूसरी शक्ति पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति। तीसरी शक्ति पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। चौथी पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। पांचवी पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। छठी पावर टू जज, निर्णय शक्ति। सातवीं पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। आठवीं पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति। एक एक शक्ति ऐसी है जो सिर्फ एक भी अगर ठीक से आ जाए ना, घरों को स्वर्ग बना सकती है। एक सहन शक्ति भी आप सोचो ठीक से आ जाए, आप सामने वालों की बातों से इरिटेट होना, गुस्सा होना, चिढ़ना, जलसी, हेट में आना बंद कर दे, स्टेबल होने लग जाएं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं आधी से ज्यादा रिलेशंस की और वर्क फील्ड की समस्याएं सॉर्ट आउट की जा सकती है, हम इम्बैलेंस ना हो तो। अब हम विस्तार से एक एक शक्ति के बारे में समझते हैं। कुछ कुछ नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी भी होगा। पहली शक्ति पावर टू विदड्रॉ। जब भी विदड्रॉ करने की बात आती है तो लगता है शायद हम आपको एस्केप करना सिखा रहे हैं। नहीं, ये एस्केपिज्म नहीं है। ये विदड्रॉ करना एक तरह से विस्तार को संकीर्ण करना है, मीन्स बड़ी बात को, बहुत बड़े विस्तार को छोटा करना, यानी सार में लाना है, 10 पेज की 4 लाइन में समरी करने जैसा है। हम जानते हैं एसेंस थोड़ा भी कितना पावरफुल होता है, तो ये शक्ति हमें कहती है एसेंस फुल हो जाओ। उसका सिंबल दिखाया है इसमें, टॉर्टोइस कछुआ, एक ऐसा जीव है जो लंबी आयु जीता है और बहुत मिरेकुलस प्राणी है। उसके 4 पैर और 1 मुंह रहता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। उसपे चोट लगे मर सकता है लेकिन जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि जहां भी डेंजर देखता है वो अपनी एक शेल है उसकी, उसके अंदर श्रिंक हो जाता है, अपने ऑर्गन्स को विदड्रॉ कर लेता है, और वो उसकी शेल ऊपर वाली पीठ इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको डंडे से मारते रहो, चढ़ के खड़े हो जाओ, उसके ऊपर से ट्रक भी पास हो जाए, कहते मरता नहीं है, इतना स्ट्रांग रहता है वो। ऐसे ही राजयोग में हम लोग क्या करते हैं, एक कछुए जैसी प्रैक्टिस बार बार करते हैं। जहां कर्म करना है वहां अपना माइंड एंड फिजिकल ऑर्गन्स को प्रॉपरली यूज करते हैं। जहां उसको चलना खाना पीना ठीक चलता है और उसको इतना भी डेंजर आया ना, आप पांव भी उसके पास लेके गए वो श्रिंक हो जाएगा थोड़े वाइब्रेशन से भी। तो जहां जितना करना जरूरी है उतना हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जीज को यूज करें, और जहां करना जरूरी नहीं है वहां से श्रिंक हो जाए, विदड्रॉ कर लें। एक बहुत अच्छी सेंस होती है जिसको हम कल भी बात कर रहे थे, व्हेन यू वांट टू से नो नेवर से Yes. When you want to say yes, never say no. पर होता क्या है? होता क्या है? लगभग बोलते रहते हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे, बोला गया, मुंह से निकल गया, खाना नहीं चाहते थे, खाया गया, करना नहीं चाहते थे, हो गया। कौन करके गया हमारे अंदर? कोई दूसरा तो घुसा नहीं था जो आया और करके गया। कोई और बोलने आया था क्या? कोई और करने आया था क्या? सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा ना, इसलिए जहाँ ब्रेक लगानी चाहिए थी वहां नहीं लगी। ऐसी गाड़ी मिल जाए जहाँ ब्रेक लगनी चाहिए वहां नहीं लगती है, एक मीटर बाद लगती है। तो जानते ना क्या होता है, क्या भी हो सकता है। तो ये गाड़ियां आजकल ऐसी हो गई है, इसलिए रिलेशंस में एक्सीडेंट हो रहे हैं, वर्क फील्ड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहीं गुस्सा आता है, कहीं नफरत आती है, कहीं डिप्रेशन आती है, कुछ न कुछ डिजीजेज आती रहती है। पावर टू विथड्रॉ लाने के लिए हमको मेडिटेशन में एक प्रैक्टिस करनी है। हमको रोल कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस होना है। हम सब रोल कॉन्शियस होके काम करते हैं, क्योंकि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में वैरायटी रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, हर एक को, किसी को थोड़े कम, किसी को थोड़े ज्यादा। और जब जब हम रोल कॉन्शियस होते हैं, रोल से भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। आपको एक एग्जांपल सुनाती हूँ। समझो एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत सारे काम है करने को, और उसके और भी कई रोल हैं। वो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ कहीं किसी का हस्बैंड भी है, तो किसी का फादर भी है, तो किसी का सन भी है, तो किसी का कोलीग भी है, तो कहीं वो प्लेयर भी है, तो कहीं वो पेशेंट भी है। सो मेनी रोल्स। अब वो गया सुबह सुबह 9 बजे ऑफिस में, ऑफिसर की कुर्सी पर जाकर के बैठा। अब ऑफिसर का रोल प्ले किया, पर वो पक्का ऑफिसर बन गया, उस ईगो में था, आई एम द एमडी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये काम वो काम, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, शाम तक पूरा भर गया। वहां से उठा, अपनी गाड़ी में आया, गाड़ी खुद चलानी थी, ड्राइवर नहीं था। अब वो ऑफिसर की कुर्सी से उठ के तो आ गया, अब उसको ड्राइवर बन जाना चाहिए। ड्राइवर बन जाएगा या एमडी बना रहेगा, क्या होगा, क्या होगा? सारी फाइलें यहां रख के आ रहा साथ में, कुर्सी उठा के ला रहा साथ में। अगर प्रैक्टिकली आप जिस जिस कुर्सी और सोफा पे बैठे हैं, यहां जाते समय आपको कहें कि ये चेयर आपके लिए गिफ्ट है, ले जाना साथ, इस सोफा हम आपको गिफ्ट देते हैं, ले जाना साथ, क्या होगा, क्या होगा? गिफ्ट कम, मुसीबत ज्यादा। जर्नी कैसी होगी? लाइफ भी तो एक जर्नी है ना। तो हम लोग अपनी अपनी पोजीशन उठा के उठते हैं, कुर्सी उठा के उठते हैं दिमाग में। तो वो गाड़ी में बैठ तो गया, अब थोड़ा कोई ने टेढ़ा निकाला, थोड़ा कोई ने रास्ता नहीं दिया, सारे रास्ते सबको कोसता गया, घर पहुंच गया, वाइफ सामने आई। अब उसको हस्बैंड बन जाना चाहिए था, वो अभी भी एमडी बना हुआ, सारी फाइलें यहां घुसी हुई है, वो कुछ कुछ बोलती है, वो बस्ट आउट होता। अब उसको लगता हो ये क्या किया बेचारी, मैंने ऐसे ही डांट दिया, चलो अब अच्छा सा हस्बैंड बनने का जोर लगाता, बस भाई तेरे लिए ये, तेरे लिए वो, सब कर देता है। इतने में अपनी मदर का कॉल आ जाता है, हाँ उसको बेटा बनना है, वो तो अच्छा सा हस्बैंड बना हुआ था अभी, अब शिफ्ट कर पाएगा एक अच्छा सा हस्बैंड से बहुत अच्छा सा बेटा। चलो बड़ा जोर लगाया बेचारे ने, मन मारा ये वो, तुम तो कल की आई, माँ ने तो पैदा किया, उसकी सेवा नहीं करूं तो किसकी करूं, चला गया। बहुत अच्छा सा बेटा, माँ तेरे लिए सब कुछ करना है, तेरे लिए जीना है। अब माँ के लिए सब कुछ करने लगा था, अपने बेटे की कोई जरूरत आ गई, अब उसको डैडी बनना है, कहाँ बेटा बना हुआ था, अब अच्छा सा बेस्ट डैडी उसको बनना है। बन सकेगा, बेटा बने या अच्छा डैडी बने? अब अच्छा डैडी बनने का जोर लगाया, कहीं खुद पेशेंट बन गया, बेटे के लिए सब कुछ करने चला था, अब बीमार क्या करेगा। ऐसे ही एक रोल लेके हम दूसरे रोल में जा रहे हैं, दूसरा रोल लेके तीसरे में, तीसरा लेके चौथे में, और फाइनली एक पजल्ड गेम, एक कंक्लूजन निकाल देते, जीऊं या मरूं, किस किस से निभाऊं, किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, ये करूं कि वो छोड़ूं, एक ताना बाना उलझ गया है। मेडिटेशन करने वाला इस मकड़ी के जाले को सुलझा देता है। कैसे सुलझाता है? सारे रोल प्ले करने हैं, डजेंट मैटर, दो चार और भी हो जाए तो डोंट माइंड। उसके लिए हमको क्या करना है, एक सेंट्रल ऑफिस क्रिएट करना है, अपना पर्सनल ऑफिस। यहाँ पर सबसे पहली कमांड दे के देखना, जीवन आसान होता, बहुत आसान होता हमारा हुआ है। हमारे पास भी मल्टीपल जॉब्स होती है, कभी हम कुक होते हैं, कभी हम सर्वेंट होते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं, खाना भी पकाते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, कभी लेक्चर करते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं। करना चाहिए सब कुछ, गलत नहीं होता है, लेकिन एक पर्सनल ऑफिस क्रिएट करना होता है। यहाँ मैं तो यहाँ ही हूँ, आई एम अ सोल ओनली, वही MD है, सोल कॉन्शियस है। ऑफिस गया, ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ करके एक कमांड अपने को देता है, आई एम ए सोल एक्टिंग एज एन ऑफिसर। काम धाम किया, काम पूरा हुआ, ऑफिसर पूरा हुआ, वापस पर्सनल ऑफिस में आ गया, अब मैं एक आत्मा हूं। अब यहां से गाड़ी में गया, आत्मा अब ड्राइवर का रोल प्ले करती हूँ, ड्राइवर पूरा हुआ, वापस इस ऑफिस में आ गया, अब मैं आत्मा हस्बैंड का रोल प्ले करती हूँ, माँ की कॉल आई, वापस आत्मा हो गया, अब मैं आत्मा बेटे का रोल प्ले करती हूँ, बेटे की कॉल आ गई, मैं आत्मा वापस अपने ऑफिस में आई, अब मैं डैडी का रोल प्ले करती हूँ, वापस ऑफिस में आई, अब मैं पेशेंट का रोल प्ले करती हूँ, वापस ऑफिस में आई, अब मैं सबॉर्डिनेट का, अब मैं बॉस का। एक अच्छी ड्राइंग बनती है, जहाँ जाओ वापस आओ। जैसे एक ऑफिस होता है, MD को समझो 45 डिपार्टमेंट्स है सर्व करने को, तो सारे डिपार्टमेंट्स की फाइल एक जगह रखी जाती है ना, जो भी डिपार्टमेंट आए वहां कांटेक्ट करो, वहां से आपको सर्व किया जाएगा। और अगर एक MD को बैठने को पर्सनल ऑफिस ही नहीं है, 45 डिपार्टमेंट्स का सारी फाइल सारा मटेरियल उसको दे दिया और एक झोले में डाल के हर डिपार्टमेंट में जा रहा, तो MD कम PN ज्यादा, तो हम सब भी बोझा उठाने वाले हो गए हैं। हर एक डिपार्टमेंट यहाँ उठा के घूम रहे हैं, नई जरूरत है। डोंट बी रोल कॉन्शियस, बी सोल कॉन्शियस। क्लियर? क्लियर? इट्स पावर टू विदड्रॉ, रोल से विदड्रॉ करो। जहां आपका काम पूरा होता है, अपने को बोलो बार बार, लेट्स विदड्रॉ, इट्स ओके नाउ, पूरी हुई मम्मी, अब मम्मी पूरी हुई, अब डॉक्टर बनती है, अब पूरा हुआ डॉक्टर, अब बहू बनती है, पूरी हुई बहू, अब जेठानी बनती है। मजा आ जाएगा, एक्टिंग करो हर जगह जा करके, क्योंकि एक एक्टर में सभी रोल्स प्ले करने की ताकत होती है, एक ड्रेस में नहीं, बॉडी ड्रेस है, बॉडी कॉन्शियस होती है, ड्रेस कॉन्शियस होती है, तो एक ड्रेस सारे रोल्स को सर्व नहीं कर सकती है। मम्मी है तो मम्मी, डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है, आए अपने बच्चे का ध्यान रखूं या इतने पेशेंट्स को भी देखूं, दोनों तरफ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एक रावण की ड्रेस पहन के कोई राम भी बने हनुमान भी बने नहीं हो सकता है, लेकिन एक एक्टर है तो एक्टिंग जानता है, हनुमान की भी जानता, राम की भी जानता, रावण की भी जानता है, कर सकता है। तो ऐसी ड्रेस भले कोई भी पहनी हुई है, मेल की या फीमेल की, आत्मा में अनंत शक्ति है हर रोल को सर्व करने की। जहां रोल मुश्किल लगने लगे, जस्ट इन्वाइट योर सोल कॉन्शियसनेस, बी सोल कॉन्शियस, आप रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा में सभी रोल्स को प्ले करने की ताकत भगवान ने दी हुई है। तो ये है पावर टू विदड्रॉ। Don't be role conscious, be soul conscious again and again. Karma kshetra par bhi clear. Dusri shakti, power to pack up. Usme ek peti aur ek bistar dikhaya hai. Jab bhi kahin jana hota hai journey par, to hame packed samaan lekar jana hota hai. Halka lekar jana hota hai. Tab hamara safar aasan hota hai. उसमें सिलेक्शन बहुत अच्छी चाहिए कि सफर में सब कुछ नहीं चाहिए. आप सफर पर जा रहे हैं एक वीक और घर का चकला बेलन और तवा भी उठाने लगेंगे क्या? बाल्टी और बेड भी उठाएंगे क्या? जरूरत पड़ गई कहीं तो नहीं, मैं इसी थाली में खाना खाता हूँ, यही वाली ले चलते हैं कि मिरर भी ले चलते हैं कि ये भी ले चलते हैं. नहीं, आपको एसेंशियल सेलेक्ट करने हैं और लाइट वेट सेलेक्ट करने हैं. एसेंशियल्स और लाइट होने के बाद उसकी पैकिंग भी आपको अच्छी आनी चाहिए. चलो आपने चार चीज ही सेलेक्ट की, दो जोड़ी कपड़ा, एक टॉवल, एक साबुनदानी, एक ब्रश. एक जोड़ी कपड़ा इस कंधे पे डाला, एक इस कंधे पर डाला, इधर साबुनदानी पकड़ा, इधर टूथब्रश पकड़ा, चल पड़े सफर को. चलेगा? वो भी सफर मुसीबत हो जाने वाला है. जीवन भी एक सफर है, एक यात्रा है. इस जीवन यात्रा को भी आसान बनाने के लिए बहुत कुछ लाइट वेट लेना है, सेलेक्टिव लेना है और पैक करना है ठीक से. कहां से और कैसे पैक करना है? यहां से पैक करना है. ये पावर टू पैकअप यूज करनी है. कहां से? इसको आदत है मन को बिखर जाने की. ये कभी तो पास्ट में घुस जाता है, कभी फ्यूचर में घुस जाता है, बिखर जाता है. और इसके बिखराव को उठा के आप चलने लगते हैं तो बहुत भारीपन आता है जीवन में. कहां कहां बिखरता है ये मन? मनोविज्ञान ने एक डेटा निकाला है, नॉर्मल ह्यूमन माइंड 65% थॉट्स पास्ट के करता है. नॉर्मल ह्यूमन माइंड, नॉर्मल 65% थॉट्स पास्ट के करता है, 30% थॉट्स फ्यूचर के करता है. और प्रेजेंट के कितने बचे? कितने? 5%. होने कितने चाहिए? प्रेजेंट के होने कितने चाहिए? 100%. बिकॉज आपके हाथ में सिर्फ आपका वर्तमान है, प्रेजेंट है, पास्ट तो मर गया. कहते हैं बरीद पास्ट, यही बोलते हैं ना, बरीद पास्ट. जो बीत गया जाने दो, उसको हिंदी में बोलते हैं पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल. क्यों बोला? किसी ने बड़े समझ के नाम रखा है भूतकाल. जो बीत गया या तो आएगा नहीं, आएगा तो भूत बन के आएगा. कहते ना ही इज पास्ड अवे. हमने उसको बरी किया, बरी करके घर आए थे, सोफा पे बैठा सामने, चिता जला के आए थे और कहता है कप चाय दे दो. और जब उसको बरी कर रहे थे, चिता जला रहे थे, हम बहुत रो रहे थे, हे भगवान ये ना मरे मैं मर जाऊं. और घर आए तो सामने बैठा है, चाय मांग रहा है. अब आप चाय देने वाले हैं उसको? चाय देने वाले हैं? कोई सयाना बुलाएंगे, निकालो इसको बाहर, देखो देखो आ गया. तो इसलिए जो बीत गया उसको दोहराओ नहीं. बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले. तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पुट अ फुल स्टॉप ऑन द पास्ट. एक सेकंड पहले भी शिव बाबा कहते जो हुआ ना डोंट थिंक, डोंट रिपीट. हो गया ना, हो गया ना. थोड़े दिन पहले की बात सुनाती हूं. अभी हमारे चीफ है दादी रतन मोहिनी जी, तो मैं एक दिन आई, दूसरे दिन उनसे मिलने गई. और उस दिन वो सुबह की क्लास में नहीं थे. हमने कहा दादी आप कल सुबह क्लास में नहीं आए थे. चुप. दूसरी बहन ने कहा, दादी अनीता बहन क्या पूछती है? दादी थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे, उनको लगा शायद हम बोल के सुना देवे। दादी पूछ रही है, आप कल क्लास में नहीं थे। दादी ऐसे स्माइल करके प्यार से उसकी तरफ देखती, कहते कल की बात पूछती है ना, बीत गया ना, हो गया, उसका क्या बताऊं, आज का तो नहीं पूछ रही है कुछ, कल का पूछती, इसलिए मैं चुप हूं, जरूरत ही नहीं है बताने की। इट्स अ ग्रेट पावर, नॉट अ जोक, नॉट अ जोक। मजाक थोड़े किया था उन्होंने, उनकी पर्सनैलिटी है। हम सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई को इस बात पे यूज करे, बीता बीत जाने दो, कितना भी अच्छा था जाने दो, कितना भी बुरा था जाने दो, वापिस मत लेकर के आओ, दोनों से महान दुख प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत अच्छा था बीत गया, आज याद करते हो दुखी होते हो, आज इतना अच्छा क्यों नहीं है, बहुत बुरा था हाय उसने ऐसा क्यों किया, अरे बीत गया आज उतना बुरा नहीं है। दोनों में भूल जाओ, दो मिनट साइलेंस, मन को एकाग्र करेंगे परमात्मा परम ज्योति पर। हम बात कर रहे थे पावर टू पैक अप, पास्ट सताता है इसलिए वहां से अपने आप को निकालना है, और फ्यूचर अनसर्टन होता है, वो डराता है, लहरों के हवाले होता है, शेख चिल्ली की कहानी जैसा होता है, दो पैसा मिलेगा अंडा लाऊंगा मुर्गी खाना बनाऊंगा, शादी होगी बच्चे आएंगे तंग करेंगे ऐसे मारूंगा घड़ाई टूट गया बेचारे का, ऐसे ख्याली पुलाव खाने वाले आजकल जमीन पर चलना भूल गए हैं। तो मेडिटेशन ये कहता है कि सारे को मैनेज कैसे करे। हम कहते हैं पास्ट इज अ हिस्ट्री, फॉरगेट इट, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, डोंट थिंक अबाउट इट, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, यूज इट। फिर भी मन ने फ्यूचर और पास्ट में जाए बिना मानता नहीं है, तो उसके लिए मेडिटेशन हमको एक फिल्टर दे देता है। अगर पास्ट में बार बार चले जाता है, बहुत कहते हैं हम जाने नहीं चाहते है, चला जाता है, क्या करे, जा रहा है, तो उसको एक एजुकेशन दो, टेक सम बेस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड यूज इट राइट नाउ। अपने से पूछो ये जो पास्ट को कुरेद रहे हो निकलना क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्या मिलने वाला है, कुछ काम की चीजें ले आओ अभी, एक एजुकेशन लेके उसको यूज करो, कोई गलती की थी ठीक करो, दूसरे ने की थी माफ करो, कुछ करो, अदरवाइज गलियों में मत भटको। टेक सम बेस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड यूज इट राइट नाउ, टेक सम बेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर एंड यूज इट राइट नाउ, अदरवाइज छोड़ दो। फ्यूचर प्लान करना बुरा नहीं है, पर उसी में बैठे रहना बहुत बुरा है बिना एक्शनेबल हुए। हाँ, जितना आपका फ्यूचर एक्शनेबल है, यूज इट राइट नाउ, अदरवाइज इसको जाने दो। अच्छा, वक्त आएगा देखेंगे, इच्छा है ऐसी करने का हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है। नहीं तो आजकल के बच्चा लोग कितना डिप्रेशन में जाते है, मुझे बस सिविल्स पास करना, आईएएस बनना 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 बनना, नो अदर ऑप्शन। एक बार दो बार तीन बार चार बार दिया, फेल हुआ, जाके सुसाइड किया, अदर ऑप्शंस ही जिंदगी के बंद कर देते हैं। हाँ, जितना फ्यूचर प्लान किया है करो, जोर लगाओ पूरा, अदर ऑप्शंस भी रखो। जितना फ्यूचर आपके लिए एक्शनेबल नहीं है उसको फ्लेक्सिबल छोड़ दो। करेंगे पर ये भी एक दो और, अनंत शक्ति होती है फ्लेक्सिबिलिटी में, बहुत सारी बातें उस पर छोड़ देनी चाहिए, वो परफेक्टली प्लान करके देता है। तो ये है पावर टू पैक अप, अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को प्रेजेंट तक ला करके पैक करना है। इसको हम कहते हैं लिव वन डे एट अ टाइम एंड मेक इट अ मास्टरपीस। एक बार में एक दिन जियो और कमाल का जियो, हर दिन का एक एक मिनट प्रॉपरली जियो, कल के भरोसे ना बैठे रहो, पास्ट का बोझ ना उठा के बैठे रहो। मेडिटेशन में हम रोज इसकी प्रैक्टिस किया करते हैं। कोई कहते बहुत गुस्सा आता था, भूल जाओ, आज सोचो मैं शांत आत्मा हूं, कल ना आ जाए गुस्सा, सोचो कल मैं शांत होऊंगा। बेस्ट, आज जो शांति की प्रैक्टिस कर रहा हूं उसका कल भी असर आ जाने वाला है। आज बेस्ट जियो, पास्ट को डिलीट कर सकता है आज का बेस्ट, फ्यूचर को चेंज कर सकता है आज का बेस्ट। किसी ज्योतिषी ने कुछ भी कहा हो, आज बेस्ट कर दो, चेंज हो जाएगा। रेखाएं बदली जा सकती हैं कर्म की कलम से, ये मेडिटेशन कहता है। इसलिए पावर टू पैक अप, क्लियर क्लियर, पास्ट से फ्यूचर से ले आओ, प्रेजेंट को बेस्ट जियो, बाकी सब ठीक हो जाने वाला है। अपनी अपनी बातों के साथ इन बातों को कोरिलेट करो, काम आने वाली है। तीसरी शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति, सहन करना। कई जगह ओल्ड फैशन की बात समझते हैं, कहीं कहीं इसको दब्बू बना या कमजोरी समझते हैं। सहन करना, दबना घुटना या कमजोर होना नहीं होता है, सहन करना शील होता है, चरित्र होता है, और सहन करना बहुत बड़ी ताकत होती है। सामने के चित्र में दिखाया है फल वाला पेड़ है और बच्चा उसको पत्थर मार रहा है। पेड़ बदले में क्या कर रहा है? पत्थर खाकर फल देता है। तो योगी का जीवन जो है एक फलदायक जीवन होता है, गुणों से भरा हुआ जीवन होता है, जो बुरा करने वाले का भला कर सके। ये है सहन शक्ति। सिर्फ बुरा किसी ने किया, हम चुप रह गए, घुट गए, रो दिए, हार्ट पर अटैक आ गया और हम कहें जी हमने सहन बहुत किया। इसको कहेंगे सहन किया? किसने पीटा और पिट गए, रुलाया और रो दिए और कहो जी बहुत सहन किया मैंने? नहीं, वो सहन नहीं किया। टॉलरेंस मीन्स स्टेबिलिटी, अनब्रेकेबल होना। जैसे एक पत्थर और एक मूर्तिकार, मूर्तिकार छेनी हथौड़े से मारता रहता है पत्थर को, पत्थर अकॉर्डिंगली शेप लेता है। अकॉर्डिंगली शेप लेना मीन्स जहां से जितना टूटना चाहिए उतना टूटता है, जहां से नहीं टूटना चाहिए वहां से नहीं टूटता है, तो मूर्ति बनता है। हर पत्थर की मूर्ति नहीं बना करती है। कोई पत्थर बहुत कमजोर होते हैं, एक छेनी लगाओ सारा टूट जाएगा, मूर्ति नहीं बन सकता है। कोई को मारे जाओ टूटता ही नहीं है, वो भी नहीं बनता है। उस पत्थर की मूर्ति बनती है जितना तोड़ना चाहा उतना टूटा, जहां नहीं तोड़ना चाहा वहां नहीं टूटा। अब मूर्तिकार यहाँ पे छेनी रख के थोड़ा मार रहा और नाक पूरी उड़ जाए तो नक कटी मूर्ति थोड़े बनने वाली है। हाँ, थोड़ा सा कटे क्योंकि नाक को शेप देनी है। ऐसे ही अपोजिशन फोर्स इज देयर दुनिया में। हर एक फोर्स की एक डिमांड होती है कि हमें कितना मोल्ड होना है, कितना रिजिड रहना है, जहां एथिक्स की बात आएगी अड़े रहना है, जहां कहीं बदलने में फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट एडजस्टमेंट है, वहां हमको टॉलरेट करना है। रिश्तों में हमको सहन करना होता है, आगे एक पावर टू फेस भी आएगी, और जहां सर्कमस्टांसेस होते हैं वहां फेस करना होता है। गरीबी आ गई, फेस करो, कमाओ, मेहनत करो। कोई रिश्तेदार रूठ गया, झुक जाओ, सहन करो, रिश्ता ना तोड़ दो। तो वहां हमें सहन करके पूजनीय बनना है, ग्रेट बनना है। कहते जो सहन करते हैं वही शहन शाह बनते हैं। तो शाहों का शाह बनने के लिए सहन शक्ति को शान बनाओ, सहन करने को कमजोरी न समझो और एक आदत डाल लो बुरा करने वाले का भला करने की। एक जगह हम कहीं ये पिक्चर समझा रहे थे, पावर टू टॉलरेट, कोई यंगेस्टर्स थे, कहते क्या बड़ी बात है, फल लगे थे फल दे दिए पेड़ ने, पत्थर लगे होते तो पेड़ पत्थर मारता ना पत्थर के बदले। तो हमने उनको कहा हम भी तो यही समझा रहे हैं कि फल वाले बनो, पत्थरों वाले क्यों बनते हो? अगर बुरा करने वाले का भला करेंगे तो सब बुरे लोग बिगड़ जाएंगे ना। लगता है ना कहीं कहीं इनको सबक तो सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सिर पे सवार हो जाएंगे। ऐसे लगता है ना, सीधा कर दें जरा इनको। उसके लिए होती तो अंदर अपनी कमजोरी है, कोई दूसरों को सीधा करने के चक्कर में हम खुद कितने टेढ़े हो गए मालूम ही नहीं पड़ता। टेढ़े होकर के दूसरों को सीधा करने चलते हैं और टिट फॉर टैट का जमाना ऐसा आ गया है जो कहने लगे हैं लोग ईंट का जवाब किससे दो? पत्थर से दो। और पत्थर का जवाब बंदूक से दो। बंदूक का जवाब तोप से दो। तोप का जवाब बॉम्ब से। बॉम्ब का जवाब मिसाइल से। मिसाइल का जवाब न्यूक्लियर वॉर का जवाब सर्वनाश। यह जवाब, the end, क्या चाहते हैं हम? झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। हम इंसान हैं, झुकने से कुछ नहीं बिगड़ता है। झुको झुको, सहो, शक्तियां बढ़ जाएंगी। आपका झुकना एक बहुत बड़ा सबक होता है। आज इस जीवन का, पूरे जीवन का अनुभव है, हमने हर अपोज करने वाले को अप्रिशिएट किया, विरोध करने वालों के आगे झुके, हमारी निंदा करने वालों की हमने महिमा की, नफरत करने वालों को प्यार दिया। प्रैक्टिकल बोल रही हूँ, भाषण नहीं समझना इसको। और हजारों बिगड़े हुओं को अपने आंखों के आगे सुधर कर रोते देखा है, झुकते देखा है। जो पत्थर सहन करता है वही पूजनीय मूर्ति बनता है, जो सहन नहीं करता उस पर तो लोग पैर रख रख के चला करते हैं। चॉइस इज अवर्स कि हमने पूजनीय बनना है या पैरों के नीचे वाला पत्थर बनना है, क्या बनना है। थोड़ा सहन करने से शक्तियों का वरदान ऊपर से मिलता है, कुछ नहीं बिगड़ता है। हम समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से बन जाते हैं, उसको कुछ दे जाते हैं। महात्मा गांधी भी कहते थे, कोई एक गाल पर थप्पड़ लगाए दूसरा गाल आगे कर दो। कोई कहते फिर क्या मिला उनको, तो गोली लग गई। कहते गोली भी लगी तो भी आई दुनिया पूज रही है, तो भी उनके उनकी फोटो हर नोट पर छपी है, हर चौक पर वो लगे हुए हैं। भारत की धन संपत्ति उनके बिना नहीं है, उनके बाद और उनके पहले किसी को राष्ट्रपिता का टाइटल मिला नहीं है। बिगड़ा क्या, बिगड़ा क्या? जमाने के लिए कुछ सहन भी किया, शरीर आज नहीं तो कल छूटना ही था, किसी ग्रेट पर्पस के लिए छूट गया तो क्या हुआ, क्या बिगड़ा? इसलिए उस ग्रेटनेस को इवोक करो, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इसके अगेंस्ट हमें ट्रू डिवाइन लव देता है, भगवान का प्यार, के सागर का प्यार ऐसा हृदय में समा लेते हैं जो सामने गलती करने वाला, निंदा करने वाला, विरोध करने वाला अपना बच्चा मालूम पड़ता है, और बच्चे का दिया दुख माँ को कभी दुखी नहीं करता है। कैसा बिगड़ा बच्चा हो माँ भला चाहती है, उसके लिए सब कर देना चाहती है, खुद गीले पे सो के भूखी रह के उसका पेट भरने चाहती है। तो मेडिटेशन ये कहता है कि परम पिता की संतान बन करके इस सृष्टि के एंसेस्टर बनो, पूर्वज बनो, बड़े माँ बाप बन जाओ। दुनिया की गलतियां, बच्चों की गलतियां समझते हुए माफ कर दो। तो दो चीज चाहिए टॉलरेंट होने के लिए, एक ईश्वरीय प्यार की ताकत और उसके आधार पर क्षमा करने की ताकत, और सबके लिए अपनेपन की भावना। ये मेरे अपने हैं ना, कैसे बदला लूं, ले नहीं सकती, मेरे ही परिवार के हैं ना, काहे को इनको दुखी करूं, थोड़ा बियर करूं, कोई बात नहीं है। ऐसे बोलती हूँ तो आपको अच्छा लग रहा है ना? अगर मैं बोलूं मजा जगा दूं, दिल करता है तो आपको गिल्लो सफेद साड़ी पहन के बेंजी कैसा बोल रही है। ग्रेटनेस कैसी होती है ना, ऐसी होती है। तो सबको पसंद है तो हमको धारण करनी है। मेडिटेशन हेल्प करता है उसमें, प्यार भरता है अंदर, भगवान का प्यार और इंसानियत का प्यार, उससे हम माफ कर पाते है। अंदर स्टेबिलिटी आती है, डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, उससे टॉलरेंस गेम लगती है। टॉलरेंस इज नथिंग एल्स अ वे ऑफ राइट थिंकिंग ओनली। किससे रिश्ते मीठे बनते हैं, कहाँ चुप रहना है, कहाँ आंसर करना है, एक राइट थिंकिंग है, नथिंग एल्स। क्लियर, क्लियर? अंदर सोच रहे हैं हमको टॉलरेंट होना, सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं? जो कट्ठे कट्ठे आए घर से, दो चार यहाँ कुछ चांस आ जाएगा, ध्यान रखना। एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। थोड़ा झुकना सीखो, ब्रह्म ज्ञानी यही बन जाओ, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। चौथी शक्ति, पावर टू एडजस्ट। मेडिटेशन ये कहता है जितना टॉलरेट करते उसको समा जाओ, दिल बड़ा रखो, सहन करके गाने नहीं गाओ मैंने तेरे लिए ये किया, नहीं। पावर टू अकोमोडेट भी कहते हैं इसको हम। अकोमोडेट कौन ज्यादा कर सकता है, दूसरे के साथ एडजस्ट कौन ज्यादा कर सकता है, जो बहुत बड़े दिल वाला होता है। तो मेडिटेशन हमें बड़े दिल वाला बनाना सिखाता है। जैसे ओशन खुद बहुत बड़ा होता है तो उसमें 10 नदियां डाल दो, फ्लड नहीं आता है। ओशन से 10 नदी निकाल दो, खाली नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है। और वही एक बाल्टी पानी हो आपके पास छोटी सी, उसमें से एक जग निकालो तो खाली दिखने लगेगी। उसमें एक जग और डालने चाहो वो ओवरफ्लो कर जाएगी, शैलो। तो हमें शैलो माइंडेड नहीं होना है, हमें ब्रॉड माइंडेड होना है। ब्रॉड माइंडेड मीन्स समुद्र जैसा, सारे शहर का कूड़ा डाल दो गया पेट में, सारे संसार के हीरे मोती डाल दो गए पेट में, ऊपर सरफेस बराबर एक जैसा है। ऐसे ही बड़े दिल वाले लोग, दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग मिल जाएं, बुरे से बुरे मिल जाएं, सबके साथ निभा लेते हैं। ऐसे नहीं कोई बहुत अच्छा मिला तो उसके दीवाने हो जाओ, तेरे बिना जीना नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम नहीं होंगे तो हम भी मर जाएंगे, ये क्या हुआ, शैलो माइंडेड। कोई अच्छा मिला उसके दीवाने हो गए, कोई बुरा मिला है हाय तुम होंगे तो हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, तेरे साथ नहीं रह सकते, ये क्या हुआ। इतना कमजोर दिल वाला यहाँ कोई बैठा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आप तो सब बहुत पावरफुल हो। पावर टू एडजस्ट, एक रियल अंडरस्टैंडिंग। ये सब कौन है, एक्टर है, शरीर ड्रेस है, अच्छा है तो हीरो है, बुरा है तो विलेन है, नाटक में सब होते हैं, कोई बात नहीं। अब विलेन की बात सुनकर के हीरो सुसाइड थोड़े कर लेता है, कोई बुरा व्यवहार करे सोचो मैं हीरो हूं, विलेन हुआ करते, उसको मुंह पे नहीं बोलना। कोई गलत व्यवहार करे तो बहन जी ने बता दिया तुम तो विलेन हो, नहीं अंदर समझ लेना भले, तो बच जाएंगे दुखी होने से। खुद अगर कुछ ग्रेट करना है तो हीरो है ना हम, हीरो तो फर्म होता है, जो करना सो करना है, डेडिकेटेड। तो हम डेडिकेटेड है, डिवाइन है। पावर टू एडजस्ट, अंदर अपने को कह दो हम सबके साथ एडजस्ट कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है द होल वर्ल्ड एज अ स्टेज, वी ऑल आर एक्टर्स। कुछ भी फाइनल नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। कभी मम्मी बनते हैं, कभी बेटी बनते हैं, कभी बहू बनते हैं, कभी सास बनते हैं, रोल बदलते रहते हैं, रोल प्ले कर रहे हैं। स्टेज पर 4 सगे भाइयों को भेज दो, एक राम बन जाए, एक रावण बन जाए, एक हनुमान बन जाए, एक कुंभकर्ण बन जाए, आमने सामने दिखा रहे है तुम मेरा दुश्मन, मारूंगा। अब राम बना हुआ रावण को मारने भी लगे ध्यान से मारेगा, लग न जाए मेरा भाई है, देख तो रहा है रावण है, अंदर कंपैशन है। ऐसा चाहिए जीवन, और इट्स द फाइनल ट्रुथ। मजाक तो नहीं कर रही हूँ ना, फाइनल ट्रुथ सुना रही हूँ ना, टेक इट सीरियसली। जीवन आसान हो जाएगा, गेम हो जाएगा, लाइट हो के बहुत ज्यादा काम करके भी थकेंगे नहीं, काम नहीं थकाता है, ऐसी बातें थकाती है। तो सबके साथ एडजस्ट कर पाएंगे। आदि पिता ब्रह्मा बाबा ने 370 भाई बहनों को हैदराबाद सिंध में समर्पित किया। वैरायटी थे सब, बहुत अच्छे भी, बहुत गड़बड़ भी सब थे, एक को भी नहीं निकाला, सबको एडजस्ट किया, सबसे काम ले लिया, सबसे सबसे। आज 8, 10, 15, 20 का स्टाफ होता है, हमको हेडेक हो जाता है, घर के 4 लोग होते हैं मुसीबत हो जाती है। क्यों? हम उनकी कमियां सोचते बहुत है, कमियां वर्णन बहुत करते हैं, और उसी को ठीक करने में लगे रहते हैं। ये सुधर जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, नहीं मैं ठीक हूं तो एडजस्ट कर लूं, कैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना है तो एडजस्टमेंट आ जाती है। पांचवी शक्ति परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। दुनिया डिप्लोमेसी की है, अच्छा बुरा सब मिक्स है इस संसार के अंदर। समझना परखना बहुत मुश्किल हो गया है, बार बार धोखा खा जाते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं इसमें। किस पर विश्वास करें, दुनिया सारी झूठी है, फिर एक रिजल्ट निकाल देते हैं। नहीं, दूसरे को परखने के लिए एक फंडामेंटल रूल मेडिटेशन का समझ लो कि दूसरे को परखने के लिए काम दूसरे पर नहीं करना है, अपने पर करना है। जितना अपना शुद्धिकरण होता जाएगा उतना दूसरे की परख ठीक होती जाएगी। कहते हैं गालिब, मैं सारी उम्र एक भूल करता रहा, धूल लगी थी चेहरे पर आईना पहुंचता रहा। कुछ ऐसी परख शक्ति में हम गलती करते हैं, चेहरा ही पहुंच लेता भाई तो आईना ठीक दिखाई देता। तो मेडिटेशन भी एक बात कहता है कि दूसरे को परखना तब भी एक्यूरेट होता है जब अपना मन साफ होता है। जैसे एक साफ पानी, कोई भी बैरियर होता है ना परखने के, बीच में कोई दीवार आती है जो हमें बैरियर बनती है, दूसरे का रियल फेस नहीं हम देख पाते। वो बैरियर अगर धुंधला है, हेजी है, तो आर पर नहीं दिखेगा। दीवार ट्रांसपेरेंट हो तो दिख जाएगा। पानी है अगर गंदा है और हलचल वाला है तो उसके अंदर क्या रखा है नहीं दिखाई पड़ता है, डेप्थ कितनी है नहीं मालूम पड़ता है। पानी साफ हो जाए, ठहरा हुआ हो तो अंदर एक पिन पड़ी भी दिखाई दे सकती है। ऐसे ही दूसरे को ठीक देखना है तो मन साफ करो। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हरे चश्मे से सब हरा दिखेगा, काले से सब काला दिखेगा, लाल से सब लाल दिखेगा। समझो, मैं अपने पर एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ कि मेरे मन के अंदर एक मैल है, जेलसी, मैल होती है ना, जेलसी है, हेट है। और ये बहन जी मेरे पास आती है, आकर के बोलती है, दीदी आप अच्छे तो हो पर आपसे ज्यादा वो अच्छी है, वो तो इतनी अच्छी है आप उसके आगे कुछ भी नहीं हो। और जिसके लिए बोल रही वो सच में अच्छी है पर मेरे अंदर एक मैल है, जेलसी। तो ये जैसा मुझे दिखाना चाहती है वैसा दिखेगी वो मेरे को, दिखेगी? वो तो ट्रू हार्ट से बोल रही है। मैं कहूंगी बच के रहना, जैसी अच्छी समझ रही हो ना अच्छी है नहीं, कहीं धोखा ना हो जाए, उसके पास मत जाया करो, मेरे पास आया करो। कौन बोला? मेरे अंदर की मैल बोली, जेलसी बोली। अगर वो जेलसी की मैल नहीं होती या साफ होता तो मैं बोलती हाँ वो बहुत अच्छी है, रियली वो दीदी बहुत अच्छी, तुमने ठीक समझा, मैं भी उससे सीखी हूँ, मेरे को भी वो बहुत हेल्प करती, मैं और अप्रिशिएट करती। हाँ तुम रोज जाया करो ना, रोज सीखा करो ना। अब कैसे यहाँ क्लियर समझ आया, परख ठीक कैसे हुई किसी के बारे में जब ये साफ था? जितना अपने अंदर लस्ट है, जितना अपने अंदर ईगो है, ग्रीड है, हम सब चीजों को उन्हीं नजरों से देखते और मापते हैं। जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कौन से वाला तिनका होता है? जो अंदर से पाप वाला और डाउटफुल होता है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, है ना? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, ये गुरु नानक देव जी ने लिखा है। इसलिए परख शक्ति ये कहती है कि अपने अपना अंदर का शुद्धिकरण करते जाओ करते जाओ। बहुत अपने यहाँ पर जुडिशरी वाले होते हैं, वो बताते हैं जब से मेडिटेशन में आए हमारे डिसीजंस कितने इजी हो गए और एक्यूरेट हो गए, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले भी एक सेशन जज है अपनी बहन, बहुत पुरानी, हमने कहा आपको टेंशन नहीं होता है इतने डिसीजन लेने में, गति होता था, पर अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी डिसीजन से पहले 1 मिनट साइलेंस, यहाँ बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, सारी पिक्चर क्लियर समझ आ जाती है, कौन कितने पानी में है, डिसीजन लिखती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। क्यों? अब मैल अपनी निकली है तो बात सामने की ठीक समझ आती है, हम निष्पक्ष हो पाते है। तो ये है पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति, उसके लिए क्लींजिंग। तो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है अपने ईगो को खत्म करके पांचों विकारों को नष्ट करने में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो जितना वो घटते जाते हैं। जहां कुछ अच्छा परखना हो ना, पहले अपनी नेगेटिविटी को चैलेंज करो, गुस्से में कभी मत किसी को परखो, हेस्टी नहीं, स्लो करो, स्लो एंड डीप थॉट में परखने की शक्ति बहुत होती है। और मेडिटेशन प्रैक्टिस में हम डेली थॉट को स्लो डाउन करते हैं, डीप करते हैं, क्लीन करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। फिर छठी है निर्णय शक्ति, परखने पर डिपेंड करती है, परंतु निर्णय शक्ति 1 सेकंड की होती है, असर कई जन्मों तक जाकर के करती है, परखने में लंबा टाइम लगता है, निर्णय कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती है। एक एडिशनल बात चाहिए होती है डिसीजंस के लिए, वो है करेज, क्योंकि जब भी अच्छी बात परख लेने के बाद आप अच्छा डिसीजन लेने लगेंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, कहीं क्रिटिसिज्म आएगा, कहीं धन की कमी आएगी, कहीं कुछ और आएगा, कोई रिश्तेदार रूठ जाएंगे, उनको मन थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होगी अच्छे फैसले लेने में। इसलिए जो कानून की देवी दिखाई है, न्याय की देवी, उसमें एक हाथ में उसके दंड भी है, दूसरे हाथ में तराजू भी है, और आंखों पर पट्टी भी है। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, अंधा मीन्स पार्शल, अंधा मीन्स इम्पार्शल, इन दो आंखों से देखना नहीं सिखाता है न्याय, तीसरी आंख से देखो, थर्ड आई ऑफ विजडम। दो आंखें मतलब अमीर गरीब, छोटा बड़ा, अपना पराया, उसके बजाय आत्मा आत्मा, भाई भाई, और दो आंखें बंद करके फिर डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाते हैं। जब डिटैच्ड ऑब्जर्वर होते हैं तो निर्णय बहुत सटीक, बहुत एक्यूरेट, जो हमने अपने दादियों के उदाहरण दिए, बहुत पढ़ी लिखी नहीं, लंबी आयु वाले, बड़ी बड़ी आयु में बड़े बड़े विश्व स्तर के काम करते रहे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष थे, न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, दो आंखों पर पट्टी बंधी है, सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है, तीसरी आंख पूरी खुली है, सब ईश्वर की संतान है, ऊपर से आए है, ऊपर वापस जाने वाले हैं, करेज पूरा, अपोजिशन का डर नहीं, क्योंकि भगवान हमारा साथी है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, वो शक्ति काम करती है अंदर सहन करने की। दो शक्तियां और बाकी है, शॉर्ट में पूरी करती हूँ, उसका थोड़ा सा और इलेबोरेट सुबह का अपना जो सेशन है वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, उसके साथ उसको करेंगे। आप सब ज्यादा देर से बैठे हमको मालूम है, लेकिन इनसे लिंक है पावर टू फेस, फेस करो किसको, अपने रिश्तेदारों को नहीं, सर्कमस्टांसेस को, बीमारियों को, धन के मामलों को, कोई भी तरह की कैलेमिटीज को, कोई भी तरह की जो अभी भी आई है, कोविड आया, ये आया, वो आया, इन सब का डट करके मुकाबला करना है, इसमें घबरा करके पीठ नहीं दिखानी है। इसके लिए हम कहते हैं इफ यू वांट पीस, If you want peace, be ready for the war. योगी सच्चे मायने में योद्धा होता है, भगोड़ा नहीं होता है। हम दुनिया से भागना नहीं सीखते हैं, यहाँ पर गृहस्थ है, निभाओ, पैसा चाहिए कमाओ, काम करना है पढ़ो सीखो, जिंदगी में शरीर मिला यूज करो, दिमाग मिला यूज करो, लेकिन अप्रोप्रिएट तरीके से करो। इसलिए सामना करने की शक्ति ये कहती है, हिम्मत न हारो, हिम्मत से चलते जाएंगे तो हिम्मत मर्दा मददे खुदा होता है। शिव बाबा भी यहाँ पर हमें कहते हैं कि हिम्मत का एक कदम तुम बच्चों का, मदद के हजार कदम मेरे, सिर्फ मैं जो दुनिया का युद्ध लड़ने की शिक्षा देता हूँ उस हर एक बात पर बोलो हां जी। आपके हां जी करते ही मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी मददगार हो जाएंगी। जैसे अर्जुन को कहा, हे अर्जुन मार डाल इन सबको, तेरे दुश्मन है। वो कहते है, कैसे मारूं, रिश्तेदार है, मामा चाचा काका, नहीं तुम मार मैं मदद करता हूं, विजय तेरी निश्चित है। तो किसके लिए कहा, बड़ी बात, नेगेटिव फोर्सेस उसके अगेंस्ट हमें पॉजिटिव होकर खड़े होना होता है। तो अपोजिशन आता है उससे लड़ो, बुराई को अच्छाई से लड़ाओ, ये वाली जंग जीतनी है। उसके लिए मेडिटेशन हमें बहुत चार्ज करता है, हर मिनट चार्ज करता है, हेल्प करता रहता है। आठवीं शक्ति, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, सहयोग शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। आजकल के जमाने में भी अच्छे लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन दो अच्छे अगर मिल जाएं तो, चार हो जाएं तो, आठ और सोलह हो जाएं और सारे अपने आप में बहुत अच्छे हैं, तो मिलकर चलना मुश्किल हो जाता है। अपने आप में सब अच्छे होते हैं। और मेडिटेशन ये कहता है कि अंगुली अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाना, तो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना, उसके लिए भी हम यहाँ पर भाषा यूज करते हैं, संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार मिलन की रास करो। रास कौन सी करनी है, ये हारमनी है, रिदम पैदा करनी है, जिसमें हम लोग एक शब्द यूज करते हैं यहाँ के बैलेंस के लिए, बालक सो मालिक। बालक सो मालिक मतलब जहाँ आपको ओपिनियन देनी है, रिस्पॉन्सिबल होना, मालिक हो जाओ, मालिक होके काम करो, जहाँ आपकी ना सुनी जाए ना मानी जाए वहाँ बालक हो जाओ, वहाँ झुक जाओ, तो कभी भी मौत नहीं आएगी खुशियों की। जैसे पौधा होता है, तूफान आता है झुक जाता है, तूफान जाता है खड़ा हो जाता है। कड़क पेड़ होते हैं बांस के, तूफान आते हैं या टूट जाते हैं या रगड़ के आग लगाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो जिंदगी में तूफान तो आएंगे, लेकिन जो झुकते हैं वो आपस में मिलजुल करके चलते हैं। तो हमने अंगुली अंगुली का, अपनी अच्छाइयों का सहयोग देना है। इसकी दो एक्सटेंडेड बातें दोनों शक्तियों की, थोड़ी प्रैक्टिस वाली भी है पूरी अष्ट शक्तियों की, वो कल के लेसन के साथ करेंगे। एट पावर्स पर प्रैक्टिस कैसे करना, और ये दो पावर्स जो भी लास्ट में सुनिए, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट, इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे हमको यूज करना है, ये कल करते हैं। ठीक है, ठीक है। एट पावर्स, टू मिनट्स एकाग्र होते हैं, सीधे होके बैठेंगे, माइंड को विथड्रॉ करेंगे इस वर्ल्डली रोल से, बॉडी एक ड्रेस से, मैं इसके अंदर एक एक्टर आत्मा ज्योति हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। अपने को थॉट दे देंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। माथे वाले सितारे से अनंत शक्तियां फूट फूट कर निकल रही है। दूर परम धाम में सर्वशक्तिमान शिव बाबा जगमगा रहे हैं। उनका शक्तिशाली प्रकाश मुझ में समाकर असीम प्यार की फीलिंग देता है। उससे मुझे सब क्रिटिसाइज करने वालों के लिए भी प्यार देना आ गया। सब अपने सब के लिए प्यार। मैं सरकमस्टांसेस से अपने को समेट सकती हूँ। अपने कार्य व्यवहार में अपने को विथड्रॉ कर सकती हूँ। I can tolerate, I can face the circumstances. हम सब इस धरती पर एक ह्यूमन फैमिली है, मिलजुल कर चल सकते हैं, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूँ। उनकी सब शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। उनका शक्तिशाली प्रकाश अपने ऊपर उतरने दो। अंदर समाने दो। Jen.